मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। आज 3 दिसंबर 2019 है और आज के इस AFEIS के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे नारी के प्रति हमारे देश की जो एक सामंतीय चेतना है जिसको आप फ्यूडल कॉन्शसनेस कहेंगे उसके बारे में मित्रों कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले एक दूसरी खबर को देख लेते हैं। आपने न्यूज़पेपर पढ़े ही होंगे, न्यूज़ भी सुनी होंगी, टीवी पर न्यूज़ देखा भी होगा। सच पूछे तो वहाँ कुछ ऐसी बहुत महत्वपूर्ण बात मेरी पकड़ में आई नहीं जिसे मैं सिविल सर्विस के लिए आपके सामने रख सकूं। हाँ, लेकिन महिलाओं को लेकर के जो दूरदर्शन पर बहुत डिटेल में दिखाया गया और अखबारों में भी आज काफ़ी कुछ लिखे गए, एडिटोरियल कमेंट्स भी आए हैं, कुछ आर्टिकल्स भी हैं, उनके आधार पर ही मैंने मुख्य विषय को लिया है। लेकिन जो दूसरे किस्म के जो छोटी छोटी जो सूचनाएं होती हैं जो प्री एग्जामिनेशन के लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मालूम पड़ती हैं उस तरह की कोई खास खबर मुझे दिखाई नहीं दी। लेकिन एक बात पर मैं ज़रूर आपसे चर्चा करना चाहूँगा और वह है कि कल से जो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, इसकी पहले भी मैंने एक बार चर्चा की थी, आप लोगों को शायद ध्यान हो, मैड्रिड में जलवायु परिवर्तन पर सम्मेलन की शुरुआत हो गई है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि कभी कभी सीधे सीधे इस तरह से ही पूछ लिए जाते हैं। और ये जो जलवायु सम्मेलन है इसका नाम है COP25। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले मैंने कॉप के बारे में बताया था जिसे हम कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि इस विषय के जो जो भागीदार हैं उनका सम्मेलन। तो ये 25 यानी कि 25वीं बैठक है COP की और जो जलवायु के बारे में, जलवायु परिवर्तन पर बात करती है। तो मित्रों, खासकर इस सम्मेलन में जो पेरिस समझौता हुआ था, मैं पेरिस समझौता के बारे में थोड़ी सी आपको बताऊंगा, उसके क्रियान्वयन के बारे में बात होगा कि अब उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। आपको ध्यान होगा कि जो जलवायु सम्मेलन जो पेरिस में हुआ था जिसे हम पेरिस जलवायु सम्मेलन भी कहते हैं, ये दिसंबर 2015 में हुआ था और उसी समय इसको लागू करने का जो आधार वर्ष बनाया गया था यानी कि कब इसे लागू किया जाएगा वो था 2020, और अभी हम 2019 के लास्ट में हैं यानी कि अगले वर्ष इसे लागू किया जाना है। तो इस सम्मेलन में इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इस बात पर चर्चा होगी कि 2020 में जो पेरिस समझौता लागू किया जाना है उसे कैसे लागू किया जाए। और इसके साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्री में अब इस तरह के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं, वो ये है कि जो पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ था उसमें एक लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि जो CO2 जैसी जो गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसेस होती हैं, उनके उत्पादन को कम किया जाए, उनके उत्सर्जन को कम किया जाए। तो कितना कम किया जाए, यहां दो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं, दो आंकड़े दे रहा हूं, लेकिन इन आंकड़ों के अंतर को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि स्टूडेंट जनरली कंफ्यूज कर जाते हैं। उसमें यह कहा गया था कि अधिकतम 2% तक उसमें कमी की जाए, अधिकतम 2%, और जो एक आदर्श जो आंकड़ा दिया गया था वो था 1.5%, यानी कि भाई 1.5% तक तो हम उत्सर्जन को कम करें ही, लेकिन कोशिश करें कि हम 2% तक उसे कम कर सके, ये उस सम्मेलन में कहा गया था। लेकिन अभी जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट आई है जिसकी चर्चा मैंने बहुत विस्तार के साथ आप सबसे की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से भूमि का सही उपयोग न होने के कारण सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन हो रहा है, उसमें ये बात कही गई कि नहीं, अगर हम पेरिस के समझौते को लागू कर भी देते हैं और उसके हिसाब से चलते रहे तो भी तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। मतलब उस सम्मेलन में जो भी फैसला किया गया है उसको लागू करने के बाद भी बात बनेगी नहीं, तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो फिर क्या उस लक्ष्य को बढ़ाया जाए या क्या किया जाए, यानी कि दो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पेरिस समझौते का क्रियान्वयन और दूसरा कि वो जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था कार्बन उत्सर्जन का, तो क्या उस लक्ष्य को बढ़ाया जाए। यहाँ जो सम्मेलन हो रहा है इसमें जो भारत है वो दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर देने की सोच रहा है। पहला तो ये है कि जो विकसित देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उन पर ये दबाव डाला जाए कि वो कार्बन के उत्सर्जन को कम करें, क्योंकि देखिए जो देश औद्योगिक रूप से जितना विकसित होगा वो उतना ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करेगा, तो विकसित देश ऐसा कर रहे हैं, तो भारत का दबाव होगा कि वो इसे कम करें। और दूसरा भारत का दबाव इस बात पर भी होगा कि एक विश्व हरित कोष बनाया गया था, ग्लोबल ग्रीन फंड बनाया गया था, देखिए नाम है विश्व हरित कोष। इसका कॉन्सेप्ट यह था कि जो विकसित राष्ट्र हैं ये इस फंड में पैसा देंगे, धन देंगे, जो लगभग 100 अरब डॉलर के बराबर था, और ये जो धन है ये फिर जो गरीब राष्ट्र हैं, जो विकासशील देश हैं, उनको दिया जाएगा ताकि वे अपने यहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं कर सकें कि वहाँ कार्बन का उत्सर्जन कम हो। देखिए एक तो सिंपल सी बात है कि जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो यहाँ देश तो अलग अलग है लेकिन पर्यावरण के मामले में तो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर अमेजान के जंगल में आग लगी है तो इसकी चिंता केवल ब्राज़ील को नहीं है, पूरी दुनिया को है। तो जो विश्व हरित कोष होगा उससे ऐसे देश जो जिनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हरित ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकें तो इस पैसे का उसके लिए उपयोग करेंगे। और साथ ही साथ भारत का ये भी होगा कि वह इन देशों पर इस बात के लिए दबाव डाले, विकसित देशों पर, कि उनके यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, जो बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, वह दूसरे देशों को यानी भारत जैसे देश भी उसमें शामिल हैं निःशुल्क उपलब्ध कराए, यानी कि उसके लिए रॉयल्टी की मांग न करे। तो इससे फिर जो जलवायु परिवर्तन जो की जो का जो संकट हमारे सामने खड़ा है उसको नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों यहाँ मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि भारत ने पेरिस समझौते पर बकायदे 2016 में हस्ताक्षर कर दिए थे, सम्मेलन 15 में हुआ था, हस्ताक्षर हमने 2016 में किए, और उसमें जो भारत ने वायदा किया, मैं आपको वायदे के बारे में दो तथ्य याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि ये लंबे समय तक आपके काम आएगा, और बकायदे जो क्लाइमेट वाली बात है और जलवायु वाली बात तो आपके सिविल सर्विस के सिलेबस में बहुत प्रधानता के साथ मौजूद है और प्री एग्जामिनेशन में तो इस पर काफ़ी प्रश्न पूछे भी जाते हैं। भारत ने जो यहाँ वायदा किया है वो है कि 2030 तक भारत जो कार्बन उत्सर्जित करता है उसमें 30-35% तक कम करने की कोशिश करेगा, लक्ष्य कि हम उसमें 30-35% तक की कमी ले आएंगे। और ये जो वो जो तुलना है 30-35% किसके मुकाबले में, तो जो वर्ष है वो है 2005, यानी कि 2005 में हम जितना उत्सर्जित करते थे उसकी तुलना में हम 30-35% तक कम करेंगे। और फिर और ये भी वायदा किया गया है कि हम 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी लाएंगे, मतलब कि ऐसी एनर्जी जो फिर से जिन्हें रिन्यू किया जा सके। तो स्वाभाविक है कि इससे कार्बन का उत्सर्जन कम होगा, ये भारत का है। और ये जो 175 गीगावाट जो एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने की बात, ये 2022 तक की है, मतलब 2022 तक हम इस लक्ष्य को पा लेंगे। तो ये दो तथ्य आपको भारत के संदर्भ में मालूम होने चाहिए। मित्रों अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, और जो मुख्य विषय है उसका रेफरेंस आपको मालूम है, कल संसद में भी इस बात को लेकर के बहुत हंगामा हुआ, जो हैदराबाद में जो एक डॉक्टर के साथ जो बलात्कार रेप का जो मामला हुआ है, पूरा देश जबरदस्त किस्म से आक्रोश से उबल रहा है, कल भी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की थी। मित्रों कल अगर आपने दूरदर्शन पर खबर देखी हो तो दूरदर्शन में बहुत विस्तार के साथ ये बताया गया है कि इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस थानों में महिलाएं होंगी और किस तरह से ग्रुप बनाए गए हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह का कानून है, सजा के क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में बहुत विस्तार के साथ बताया गया। और संसद में भी कल ये बात कही गई कि इसके लिए अगर और कड़े कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी तो सरकार इस हेतु तैयार है। चलिए ये तो एक पक्ष है और डेफिनेटली इसका एक ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है, लेकिन क्या कारण है? आप देखिए कि निर्भया कांड के बारे में कुछ कानूनों को सख्त किया गया, समाज में इसके बारे में एक चेतना भी बढ़ी, यानी कि आक्रोश का भी अब लोगों को लग गया कि नहीं पूरा देश उबलने लगता है। इसके बाद भी ये घटनाएँ हो रही हैं, और बल्कि सच पूछे तो ऐसा नहीं लगता है कि घटनाओं में कोई कमी आई हो, ऐसा भी नहीं लगता है। तो क्या कारण है कि ऐसी स्थितियां होती चली जा रही हैं? तो ठीक है, चलिए नियम कानून तो अपनी जगह काम करेंगे, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं जो हमारी सामाजिक चेतना है महिलाओं को लेकर के, नारी के प्रति, वह भी जिम्मेदार है। अभी भी भारतीय चेतना सामंतवादी व्यवस्था की जकड़न में है। सामंतवादी व्यवस्था जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब है कि वो खासकर एक विलासितापूर्ण अप्रोच लेकर के चलती है। उसको ऐसा लगता है सामंतीय चेतना को कि जो धनी वर्ग है या जो उच्च वर्ग है कह लीजिए या जो प्रभावशाली वर्ग है उसके लिए जो दूसरे लोग हैं या जो दूसरी व्यवस्थाएं हैं या दूसरी वस्तुएं हैं वो सब एक विलास की वस्तुएं हैं, मनोरंजन की वस्तुएं हैं। और जो हमारा मध्यकाल रहा है चूंकि पूरी तरह से सामंती व्यवस्था का काल रहा है तो उसने महिलाओं को भी एक प्रकार से उपभोग की सामग्री के रूप में देखा, चाहे वो कलाओं के माध्यम से हो, चाहे वो पत्नी के माध्यम से हो, चाहे वो प्रेमिकाओं के माध्यम से हो, चाहे फिर वैश्याओं के माध्यम से हो, जिस माध्यम से भी हो। तो ये जो चेतना है यह चेतना एक प्रकार से यूं कह लीजिए कि अभी भी कहीं ना कहीं प्रिवेल कर रही है, बावजूद इसके कि हम सभ्यता और शिक्षा के इस स्तर पर पहुंच गए हैं। तो जो मूलभूत चेतना होती है जब तक उसमें हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक बहुत मुश्किल है कि महिलाओं के प्रति इस तरह के होने वाले अपराधों पर बहुत प्रभावशाली नियंत्रण कायम किया जा सके। और अगर हमने चेतना को बदल दिया तो यूं कह लीजिए कि दूसरी व्यवस्थाओं की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। एक नाम आपने सुना होगा शायद, सिमोन द बोवार, इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था, सिमोन द बोवार। ये बहुत बड़ी मतलब एक विचारक मानी जाती हैं, फिलासफर मानी जाती हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी और ये चेतना से जुड़ी हुई बात है। उन्होंने ये कहा था कि जो लड़की है वो पैदा नहीं होती है, लड़की मतलब यानी कि शरीर के रूप में वो पैदा नहीं होती है, वो बनाई जाती है। बहुत खूबसूरत बात कही कि लड़की पैदा नहीं होती है, वो बनाई जाती है। अब लड़की के रूप में, शरीर के रूप में तो वो जन्म ले रही है, लेकिन उसकी जो अपनी चेतना है और उसके प्रति जो समाज की चेतना है इसका निर्माण किया जाता है। तो लड़की की चेतना का निर्माण कि नहीं तुम कमजोर हो, नहीं तुमको पुरुष के संरक्षण में रहना पड़ेगा, नहीं तुमको बचकर चलना पड़ेगा, तुम ये काम कर सकती हो, ये काम नहीं कर सकती हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इस तरह से करके उसकी चेतना को कमजोर कर दिया जाता है, दूसरे पर आश्रित बना दिया जाता है। और पुरुष की जो चेतना है वो लड़की को उस सामंती चेतना की निगाह से ही देखती है। तो इसका नतीजा ये होता है कि दोनों के बीच में जो एक स्वस्थ संबंध होने चाहिए, जो बहुत ही यथार्थवादी संबंध होने चाहिए, वो नहीं हो पाते। उसकी जगह पर विलासिता वाले संबंध आ जाते हैं, उपभोक्ता वाले संबंध आ जाते हैं। और वो जब जैसे ही संबंध आते हैं, सच पूछिए तो जो पूरा का पूरा जो समाज की जो हमारी पूरी संरचना है उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न हो जाती है, एक असंतुलन सा आ जाता है। और यही कारण है आप देखिए कि आज भी हमारे समाज में महिलाओं की उस साझेदारी का अभाव है जो हम विकसित राष्ट्रों में पाते हैं। एक अच्छी बात यह है कि भारत में भी धीरे धीरे साझेदारी बढ़ रही है और महिलाएं अब उन क्षेत्रों में हमें दिखाई पड़ने लगी हैं जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। आपने अगर केबीसी का अंतिम एपिसोड देखा हो जहां जिसमें सुधा मूर्ति जी आई थी तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उस कॉलेज में जिसमें वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी वो इकलौती लड़की थी और बाकी सब लड़के थे। सोच करके देखिए वो समय था। और आज इंजीनियरिंग में लड़कियों की भी भागीदारी कम नहीं है, तो चीज़ें तो बदल रही हैं। वो आर्मी में भी आपको दिखाई देंगी, वो नेवी में भी दिखाई दे रही हैं, वो एयरफोर्स में भी दिखाई दे रही हैं, उन क्षेत्रों में दिखाई दे रही हैं जहां पर वो पूरी तरह से उनका प्रवेश ही निषिद्ध सा है। तो वो अपनी जड़ताओं को तो वो अपने लेवल पर तोड़ रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि समाज की चेतना की जड़ता को अभी वो नहीं तोड़ पाई हैं, लेकिन टूटने की शुरुआत हो गई है। और वैसे भी जो समाज एक कुंठाग्रस्त समाज हो खासकर इन मामलों को लेकर के, तो उसकी चेतना को तोड़ने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा आघात की ज़रूरत पड़ेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं मित्रों कि अगर हमारी दो व्यवस्थाएं ठीक हो जाए, एक पुलिस प्रशासन और दूसरी न्याय प्रणाली। न्याय प्रणाली के तहत मैं दो तीन बातें खासकर कहना चाहूँगा। एक, न्याय व्यवस्था में जो देरी होती है वो जल्दी होने लगे। दूसरी बात यह है कि जो इतनी खर्चीली है वो ठीक हो जाए। और खासकर ऐसे मामलों में जहां रेप केस जैसे मामले होते हैं तो देखें कि कैसे ये सामाजिक मर्यादा के तहत इनका हल निकाला जा सकता है। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ओपन में होते हैं और बहुत ज़्यादा जांच परख में उस तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं जिससे कि महिलाओं को अपने लिए वो अपमानजनक मालूम पड़े, तो स्वाभाविक है कि वो फिर ऐसे मामले दर्ज कराने में वो डरते हैं, वो खुद भी डरेंगे और उनका परिवार भी डरता है। तो इन प्रणालियों में भी सुधार करके काफ़ी कुछ स्थिति को बदला जा सकता है। लेकिन जो मूल बात है मुझे लगता है वो चेतना की बात है। तो दोस्तों मुझे लगा कि इस बात पर भी, इस इशू पर भी, इस कोण पर भी थोड़ी सी बात की जानी चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। आज मैं इंडियन एक्सप्रेस का एक आपको आर्टिकल दे रहा हूँ जो खासकर ट्रांसजेंडर पर्सन बिल के ऊपर है, इसे आप सब जरूर पढ़िएगा। मेरी कोशिश होगी कि इसे मैं आप सबको हिंदी में उपलब्ध कराऊँ। मित्रों, ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं योगिता दिल्ली से, राहुल, अनिल कुमार सफ़ी, रवि गर्ग, सौरभ पटेल, वैदमा कुशवाहा पन्ना मध्य प्रदेश, वंदना कुशवाहा पन्ना मध्य प्रदेश से, और सूरज कुमार, आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।